आदरणीय रामनाथ भाई जी का हम बहुत बहुत एक हाथ की ताली बजाकर स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहते नजरें बदले तो नजारे बदल जाएंगे, स्मृति को बदलो तो स्थिति कैसे श्रेष्ठ बन सकती है। श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ स्थिति, इस विषय पर हम सबको अभी क्लास कराएंगे रामनाथ भाई जी। आप पिछले 40 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में हैं। ये ज्ञान आपको कर्नाटक में प्राप्त हुआ और पिछले 35 वर्षों से आपने अपना पूरा जीवन बाबा के इस यज्ञ की सेवाओं में समर्पित किया हुआ है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से आप सदा ही बाबा की सेवा में तत्पर रहते हैं। मधुबन में आप विशेष रूप से टोली बांटने की जिम्मेवारी आपके ऊपर ही है और योग के विषय में आपकी विशेष रुचि है। कर्म योगी बन कर्म करते हुए भी कैसे हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, उसका आप हमारे सामने एक सुंदर मिसाल है। आपके क्लासेस के द्वारा लाखों आत्माओं को योग के विषय में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। भारत से बाहर भी कई देशों में जाकर आपने अनेक आत्माओं को योग की सुंदर प्रेरणा दी है। अब हम क्लास करेंगे आदरणीय रामनाथ भाई जी से।
ओम शांति। आज आप और हम सभी अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने के लिए इस डायमंड हॉल में उपस्थित हुए हैं। तो अव्यक्त मिलन मनाने के लिए अव्यक्त स्थिति चाहिए, क्योंकि साकार मिलन नहीं है। तो इसलिए कभी कभी हम गताते हैं, बोलते हैं कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है। तो हमारी स्थिति कैसी श्रेष्ठ होंगी, अपने आप तो नहीं होंगी। तो श्रेष्ठ स्मृति से स्थिति होती है। अगर श्रेष्ठ स्मृति है तो श्रेष्ठ स्थिति है, श्रेष्ठ स्थिति है तो श्रेष्ठ व्यवस्था होती है। जो हमारे जीवन में आज जो व्यवस्था है तो वो ऊपर नीचे है, कोई बहुत गरीब है तो कोई बहुत श्रीमंत है, तो इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है। तो वो कैसे होंगी, तो उसके लिए बाबा ने कहा बच्चे श्रेष्ठ स्मृति ही आधार है। तो सारा दिन में अगर हमारी स्थिति श्रेष्ठ रहना चाहिए, अवस्था श्रेष्ठ रहना चाहिए, तो श्रेष्ठ स्मृति चाहिए। तो श्रेष्ठ स्मृति कहां से लेके आए, नहीं तो हमारे अंदर आज स्मृति है मैं माना देह और देह के संबंध है, देहधारी आदत है। आप देख लो साक्षी होकर यहां बैठे हो तो हर एक को स्मृति है मैं माना शरीर हूं, ज्ञान है मैं माना आत्मा हूं, ये ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान जागृत नहीं है, अप्लाइड नहीं है। तो ज्ञान का उपयोग, अगर ज्ञान सुनते समय अच्छी तरह से हमने सुना है तब दुनिया में कहते हैं समझ, सुनना सब कुछ नहीं है, लिस्निंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। बहुत कुछ हम सुनते हैं पढ़ते भी है लेकिन समझ में नहीं आया। तो समझ कहां है, बुद्धि के अंदर है। तो बुद्धि के अंदर स्मृति रहती है। तो सारा दिन में अगर एक समझ में हमारे अंदर आ जाए तो सारी समस्या का जीवन में दो दुख और सुख का निवारण, व्यर्थ विचार विकल्प इन सब का निवारण है स्मृति। तो मैंने अपने जीवन में देखा तो एक स्मृति अगर बुद्धि के अंदर मैंने फिट किया तो ये सारे ज्ञान का निचोड़ है। तो सारा जो ज्ञान है, योग नहीं लगता है, मुरली याद नहीं रहती है, तो बहुत कुछ है। तो ये सारे का निचोड़ क्या है, तो मैंने अपने जीवन में देखा एक स्मृति याद में रहना चाहिए कि मैं आत्मा ने इस शरीर में जन्म लिया है और अंतिम श्वास तक मैं इस शरीर के द्वारा कुछ भी करता हूं तो मेरे अंदर रिकॉर्ड होता है। ये एक स्मृति रह गया तो बस, कि मैंने इस शरीर में जन्म लिया है और सदानी अंतिम समय तक, इस श्वास के अंतिम समय तक, इस शरीर के द्वारा मैं हर सेकंड जो भी कर्म करता हूं वो मेरे अंदर रिकॉर्ड होता है। ये अगर स्मृति है तो मेरे से जो व्यर्थ दृष्टि जाती है, व्यर्थ बोल निकलता है, व्यर्थ कर्म होता है, कि सारे का निचोड़, ये सारा खत्म होना चाहिए। कब होगा? तो एक स्मृति पहले चाहिए कि मैं आत्मा, वो तो हमने सबने ज्ञान समझ लिया, तो आत्मा होने के बाद भी इस शरीर के द्वारा मैं कुछ भी करता हूं मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। और उसके अनुसार इंग्लिश में उसको कहते हैं फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन एंड देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। मुझे पता ही नहीं था लेकिन कर्म तो मैंने किया, उसका सुख या दुख मुझे भोगना ही पड़ेगा। ये अगर कर्म करते समय अगर स्मृति है तो कभी भी मेरी दृष्टि इधर उधर नहीं जाएंगी, मेरे मुख से गलत शब्द निकलेगा नहीं, अवेयरनेस है। अगर देखो मैं इधर बैठा हूं, हर सेकंड रिकॉर्ड हो रहा है, ये अगर पता है मैं एक एक शब्द चुन चुन के बोलूंगा, क्योंकि अवेयरनेस है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो दुनिया में पहले भी, भक्ति मार्ग में भी, भारत में हर एक बच्चों को एक स्मृति दिलाते थे, क्या भगवान चारों तरफ है, भगवान देखता है, भगवान देखता है, ये स्मृति दी थी कि आप कोई गलत कर्म नहीं करना तो सजा मिलेंगी। लेकिन उससे भी मनुष्य भगवान कहां है, कहां देखता है, तो कोई डर नहीं है। लेकिन ये तो सत्य है कि आत्मा ने इस शरीर में जन्म लिया है, इस शरीर के द्वारा किसी भी कारण से मैं जो भी करता हूं मेरे जीवन में दुख और सुख का कारण है। हमारे जीवन में दुख सुख, ये समस्या, ये विघ्न, ये बीमारी, ये क्यों आया, किसको पूछेंगे आप? अपने आप से पूछना है कि मैंने ऐसे कर्म किए हुए हैं। तो आप पूछेंगे मैंने ऐसे कर्म किया, प्रूफ? स्वप्न बताते हैं। जब हम रात को सोते हैं, आंखें बंद करके सोते हैं, तो स्वप्न कहां से आए? पांच विकारों के स्वप्न कहां से आए? ये मैंने किए हुए कर्म अंदर भरे हुए हैं। तब हम कहते हैं पुण्यात्मा, पापात्मा, देवात्मा, महात्मा। तो मैं कौन सी आत्मा हूं? तो मुझे अपने आप को देखना चाहिए। और ये अगर मैं अपने आप को देखता हूं, हां मेरे अंदर ये भरे हुए हैं, अभी भी ऐसे स्वप्न आते हैं, अभी भी ऐसे मन में विचार आते हैं, कहीं से नहीं आते हैं, अभी भी मेरे मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं। हम जानते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, फिर भी निकलता है। क्यों? कि अभी भी ये स्मृति दृढ़ नहीं हुई है, पक्की नहीं हुई है। अगर ये स्मृति है, मेरा हर सेकंड रिकॉर्ड हो रहा है और उसी के अनुसार मेरे जीवन में दुख है, सुख है, विघ्न है, गरीब है, श्रीमंत है, कोई नहीं करता है, मेरे कर्म ही मेरे जीवन का आधार है। तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आज हम उसी के लिए इधर आके बैठे हैं कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा, आप देखते होंगे दुनिया में श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, बहुत धर्म गुरु आए, उन्होंने ज्ञान सुनाया लेकिन पालना नहीं किया। यहां देखो आज से 60-80 साल पहले शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ज्ञान सुनाया, बस उसके बाद बंद नहीं हुआ, हर साल आकर के ज्ञान सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी एक दफा, वही चल रही है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम कहते भगवान बाप नहीं, मां बाप है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते हैं। मां बाप बच्चों को जन्म देके छोड़ते नहीं है, पालना करते हैं, खिलाते पिलाते पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं। तो भगवान मां बाप है तो पालना करता है। एक दफा ज्ञान सुनाया चला गया नहीं, हर साल अपना तन न होते हुए भी गुलजार दादी के तन में आके आज भी बच्चों को हर प्रकार से ज्ञान नई नई तरीके से वर्तमान परिस्थिति के अनुसार। वर्तमान में परिस्थिति अलग है, आज से 50 साल पहले भी सिर दर्द था, उस समय भी गोली थी और आज भी सिर दर्द है, आज दवाई दूसरी है। तो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बाबा ज्ञान देता है। तो आज ऐसी वर्तमान परिस्थिति है कि हम उसके लिए इधर इकट्ठे हुए हैं कि अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने के लिए। तो अव्यक्त स्मृति चाहिए, व्यक्त स्मृति नहीं। तो अगर अभी से भी कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सवेरे से नहीं किया, अभी भी चांस है, आज बाप दादा जब आएंगे अब बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं, बाबा के वाइब्रेशंस कैच कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कौन करेगा? शरीर के द्वारा नहीं, बुद्धि। तो बुद्धि एक्टिव जागृत होनी चाहिए। तब गीता में भी देखो अर्जुन को कहा, अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, कहा आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। तो बाबा ने भी आकर के हमको दिव्य दृष्टि दिया है, बुद्धि दी है। तो ये बुद्धि नेत्र खुला रहना चाहिए। तो आज सारे दिन में कम से कम अभी 2-3-4 घंटे हैं, तो अभी से सिर्फ खाना खाने के लिए आप मुंह खोलो और अभी से शाम तक 7 बजे तक बिल्कुल मौन, मुख से कोई काम नहीं है। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए जाता है, हाँ बच्चे खेलने के लिए भी जाते हैं, घूमने के लिए भी जाते हैं, हम कोई लक्ष्य लेके आए, अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाना है। उस लक्ष्य को लेकर अगर थोड़ा समय भी अगर हम पुरुषार्थ करें आज, तो बहुत कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। और ऐसा मौका सारे कल्प के अंदर यही एक समय है, कल नहीं मिलेगा, सारे कल्प के अंदर एक दफा मिलता है मनुष्य को अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो वो आज समय मिला है, तो अभी से आप एक स्मृति में रखो, मैं कौन, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। ये एक स्मृति कि मैं कौन, निरंतर स्मृति ऐसी का चिंतन करो, शिव बाबा कौन, सर्वशक्तिवान है, कौन सी शक्ति है उसके पास, एक एक शक्ति का चिंतन करते रहो। मैं कौन, मैं कौन, मेरा रूप कैसा है, अगर स्व का चिंतन, नहीं तो क्या हो रहा, शरीर का चिंतन, किसी का फोन आया उसका चिंतन, बहुत भाई बहने दिखाई देते हैं उनका चिंतन, इतनी सभा में मैं अकेला हूं, किसी को देखकर भी मेरे अंदर कोई विचार नहीं, किसी के मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, क्यों, मेरा मन के अंदर, बुद्धि के अंदर ये स्मृति है, मैं कौन, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा आज गुलजार दादी के तन में आकर हमसे मिलेंगे, हम उनको देखना चाहते हैं। कैसे देखेंगे आप, उनके वाइब्रेशन शक्ति ग्रहण करती है, तो वो कृति करने के लिए बुद्धि की, बुद्धि स्मृति जागृत रहना चाहिए। और उस स्मृति में अगर आप इधर बैठते हो, देखना आज कैसे, देखो शरीर में रहते हुए भी शरीर का कोई भी स्मृति नहीं आता, देहधारी कोई याद नहीं आएगा। अगर ये स्मृति नहीं, पर स्मृति, देह और देह का संबंध, पर स्मृति जागृत होती है, दोनों में से एक। आप कहेंगे हम दोनों काम करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है, देखा जाता है हॉल में बाबा से मिलने आए और मोबाइल से बात भी करते रहेंगे, बिजनेस भी करते रहेंगे, लेकिन साइंस कहता है 2 things cannot be done at the same time, दो काम एक साथ नहीं होते हैं, एक खुर्ची पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। तो इसके लिए हमारे अंदर ये धारणा चाहिए, यहां जिस कर्म के लिए आए हम, बाकी कर्मों को साइड करते हुए अगर एक के ऊपर हम ध्यान देंगे, जिस लक्ष्य से आए उसकी पूरी प्राप्ति कर सकते हैं। और बाबा आने के बाद देखना, 10 मिनट इस कोने से इस कोने तक हर एक आत्मा को दृष्टि देता है, हर एक आत्मा को अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, शक्ति देता है। उस समय कोई कोई भाई बहन हाथ हिलाते हैं, कोई इधर उधर देखते रहते हैं, कोई कैमरा से फोटो निकालते हैं, तो अभी भी हम स्थूल रूप में आते हैं। हाथ हिलाना माना क्या है? शरीर को यूज कर रहे हो, शरीर के भान में आए। नहीं, वो समय नहीं, बाबा को ऐसे हाथ हिलाना नहीं, बाबा के वाइब्रेशंस लेना है। तो आज अभ्यास करके देख लो आप, बिल्कुल अशरीरी होकर, क्योंकि अव्यक्त मिलन है। शरीर का भान है, अगर अपने को आत्मा, कौन सी आत्मा, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं और सर्वशक्तिवान शिव बाबा को मिलने आया हूं, कोई विचार नहीं। बाबा को जब गुलजार दादी आके बैठेंगी, आप बिल्कुल देखते रहो गुलजार दादी के प्रकृति में कैसे बाबा अवतरित होता है। कोई भी सूक्ष्म चीज देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। अभी देखना, हमको ऐसा इचिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है? माइक्रोस्कोप लगाओ, इतने बड़े बड़े देखो जर्म्स घूमते हैं। तो बाबा अभी सूक्ष्म है, सूक्ष्म को देखने के लिए भी, अनुभव करने के लिए सूक्ष्म बुद्धि अर्थात एकाग्र बुद्धि चाहिए। बुद्धि के अंदर और कुछ चलते हैं तो हम बाबा के वाइब्रेशंस को कैच नहीं कर पाते। फिर जाते समय कहते हैं हमें कोई अनुभव नहीं हुआ। अनुभव तो अपने आप तो नहीं होगा ना। जीभ के ऊपर एक चीनी का दाना रखो तब मीठा लगता है, बिना चीनी का दाना रखे मीठा लगेगा नहीं, है ना? तो कुछ करने के बाद अनुभव होता है, बिना किए हुए अनुभव होना चाहिए। तो यहां कोई चमत्कार नहीं है। तो बाबा ने कहा विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। अगर विधि नहीं तो वो चमत्कार से अल्पकाल की प्राप्ति तो बाबा वो नहीं देता है। बाबा ने आके कहा बच्चे 21 जन्मों की मैं गारंटी देता हूं, जो आज हम अभ्यास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, जो भी अभ्यास करते हैं उसका फल प्रारब्ध 21 जन्मों की गारंटी है, अविनाशी है। आज भी धरती भी एक बीज बोलो 50-100 दाना देती है, नियम है सृष्टि का, एक बीज बोना चाहिए, एक का एक नहीं, एक का 50-100 गुना देती है। और ये सृष्टि की रचयिता स्वयं सर्वशक्तिवान वो कहता है बच्चे थोड़ा समय ही, सारा कल्प आपने बहुत कुछ किया, व्रत किया, जप किया, पूजा किया, प्रार्थना किया, सब कुछ किया, लेकिन एक काम नहीं किया, क्या? वो पाप को नहीं मिटाया। ये मांगा, वो मांगा, सब कुछ मांगा, लेकिन पाप मिटाओ नहीं कहा। तब बाप शिव बाबा ने आके कहा मैं संगम पर आता हूं, बच्चे कुछ देने के लिए नहीं आता हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं भाग्य विधाता हूं, बच्चों का भाग्य बनाने की विधि बताता हूं। और वो विधि आज है, आराम से बैठ करके आप अभी जाते समय भी मुख का कोई काम नहीं है, सिर्फ खाना खाने के लिए मुंह खोलना है। अभ्यास करके देख लो कि बिना मुख खोले हुए हम पांच छह घंटा बैठ सकते हैं। शरीर को भूलकर, शरीर की स्मृति नहीं, बार बार अपने को स्मृति देना है, नहीं तो दूसरी स्मृति जागृत होती है, क्योंकि देह में हम कंप्लीट अशरीर नहीं बनते हैं। शरीर में रहने के कारण जैसे मां को अपने बच्चों के विचार आना सहज है, क्योंकि संबंध है, लेकिन अभी यहां बैठे, इस हॉल में बैठे हुए कोई मां नहीं है। कौन? हम आत्माएं हैं, परमात्मा मां बाप से मिलन मनाने के लिए आए हैं। तो ये श्रेष्ठ स्मृति में अगर आप बैठते हो तो बाबा के देखना एक एक महावाक्य आपके लिए वरदान बन जाता है, एक एक महावाक्य ग्रहण हो जाता है, समझ में आता है। नहीं तो हम कहते हैं सुना मैंने, समझ में नहीं आया। तो बुद्धि इधर उधर है, कोई गया इधर देखते हो, कोई आया इधर देखते हो, और किसी का फोन आया, हाँ फोन करने के लिए समय है। बाबा जाने के बाद 10 घंटे फोन करते रहो, लेकिन थोड़े समय पढ़ाई के समय, तब कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, बिना पढ़ाई के कोई भी नवाब बनानी है, अगर उच्च स्थिति चाहते हो तो पढ़ाई चाहिए। बाबा आने के बाद भी पढ़ाने के लिए आता है। तो इस स्मृति में अगर आप बैठते हो, बहुत जन्मों की हम कमाई जमा कर सकते हैं। नहीं तो दुनिया में देखो, साधु सन्यासी कितनी तपस्या करते हैं, कितना व्रत करते लोग, निर्जल रखते हैं, पानी नहीं पीते, क्यों? भगवान को पाने के लिए। और वो सर्वशक्तिवान शिव बाबा आज हर एक बच्चों को, मेरे बच्चे कहता है, मीठे बच्चे, सिकिलदे बच्चे, एक एक बच्चों को बाबा यहां से देखो, इस कोने से इस कोने तक एक एक आत्मा को दृष्टि देता है। और एक एक आत्मा के हर मनोकामनाएं, जो भी इच्छा है, अगर वो श्रेष्ठ इच्छा है, हर एक मां बच्चों की मनोकामनाएं बाबा पूर्ण भी करता है। तब भक्ति मार्ग में कहते, भगवान जब भाग्य बांटने आया था तो आप कहां थे? सो रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, है ना? इसलिए कभी कभी ये भी अभ्यास नहीं करना, कोशिश नहीं करना, कभी कभी 12 एक बजे कोई सीट मिलना चाहिए, पहले आके बैठ जाएंगे, और जब बाबा आता है तो नींद आ जाएंगी, है ना? ये भी भक्ति मार्ग की अभी भी हमारे अंदर एक आदत है, क्यू में खड़ा होना। ये रॉयल बच्चों की नहीं, बाबा कहते क्यू में खड़ा कौन होता है? रॉयल बाप के बच्चे हो, एक एक राजकुमार राजकुमारी हो। तब बाबा कहते मेरे बच्चे कौन, क्यों में खड़े होने वाले नहीं, समय पर उस कोने में भी बैठो आप। वाइब्रेशन, भगवान के परम धाम से अगर इधर शक्ति मिल सकती है तो इस हॉल में, इस कोने से उस कोने में नहीं मिलेगी। हम योग में बैठते परम धाम से शक्ति लेते हैं। तो यहां से यहां नहीं, जब बाबा स्वयं इधर आता है, किसी भी कोने में बैठो आप, आराम से हो, पहले से सीट रख करके आके बैठेंगे, जब बाबा तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, शांत वातावरण होता है। बहुत बाबा के बच्चे कहते हैं क्योंकि ऐसे वातावरण में बहुत अच्छी नींद आती है। नींद भी अच्छी कहां आती है? शुद्ध पवित्र वातावरण है। मेरा आज बहुत अच्छा योग लग गया, क्योंकि कमरे में नींद नहीं आती, वाइब्रेशंस अलग है ना, तो वहां नींद नहीं आती है, यहां आके बैठो बहुत अच्छी नींद आती है, क्यों? पवित्र वातावरण है। लेकिन उसके लिए वो समय नहीं, इसलिए मैं देखता हूं हर टाइम बहुत बाबा के समय पर भी फोन से बात करते हैं, कोई नींद आ जाती है, क्योंकि अभी खाना खा के आके जल्दी जल्दी बैठ जाएंगे। नहीं, ये भक्ति मार्ग वाली जगह, लंबे क्यू में खड़े होना, पहले से आके बैठना जरूरत नहीं है। आज अभ्यास करके देख लो, और हॉल में आने के बाद पहले से तैयारी करके आओ, कम से कम हमको 3-4 घंटा बैठना चाहिए। साधना करने वाले देखो, एक एक दिन एक आसन पर बैठते हैं, हिलते भी नहीं है। तो वो बाबा सदा नहीं कहता, कम से कम बच्चे बाप आता है उस समय, ऐसी अवस्था आते समय पानी पी के नहीं आना, कम पी के आओ, बाद में पी लो, खाना कम खा लो, अच्छी तरह से नींद करो। यहां बैठने के बाद एक एक सेकंड एक एक जन्म की प्राप्ति कराता है। एक सेकंड भी आपकी दृष्टि इधर उधर गई, बाबा आया, आप कहेंगे हमने देखा ही नहीं। एक एक सेकंड का वैल्यू है। ये कब पता चलता है? जब बाबा नहीं मिलेंगे, बाद में पश्चाताप होगा, भगवान आए, हम बाबा के सामने भी बैठे थे। जब कोई भी वस्तु होता है ना, उस समय वैल्यू नहीं होता है, वो वस्तु नहीं है तब उसका वैल्यू पता चलता है। तो अब बाबा आता है हर एक बच्चों को दृष्टि और शक्ति देने के लिए आता है, ऐसे नहीं आता है। तो इसलिए आज उस स्थिति में बैठ जाओ, बिल्कुल अशरीरी। अगर आप में से कोई भी अशरीरी कैसे बनना है वो भी बताता हूं, नहीं तो अपने आप अशरीरी नहीं बनते हैं। बाबा ने 5 नाम लिया है, अशरीरी बनो, अव्यक्त बनो, विधेयी बनो, देही अभिमानी बनो। तो ये कैसे बनेंगे आप? आराम से आके अपने अपने जगह पर कहीं भी बैठो, अपने को जागृत करो कि मैं कौन। नहीं तो मन के अंदर इधर उधर के विचार आते हैं, मन इतना शांत नहीं है। बुद्धि के अंदर दूसरे स्मृति जागृत होती है, बुद्धि भी खाली नहीं, कहते हम इधर बैठे हैं लेकिन व्यर्थ विचार आते हैं, क्या करें? व्यर्थ विचार अपने आप नहीं आता है, खाली मन या खाली बुद्धि शैतान का काम करती है। अंदर जो भरा हुआ है उसका चिंतन चलता है। जो समझते हैं कि हम एक शांत होकर बैठ नहीं सकते, उनके लिए बैठते, क्योंकि बहुत बाबा के बच्चे पहली दफा आए हैं। तो इधर जब बैठते हो ये पांच प्रश्नों का चिंतन करो, मैं कौन? हाँ मैं आत्मा हूं। अगर मैं किसी से पूछता भाई जी आपका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे ना। तो ये मन और बुद्धि को एक करना चाहिए, नहीं तो ये भी देखना आप बैठते हो मैं आत्मा हूं ज्योतिर्बिंदु, अरे आज उसको फोन करना है। ये बुद्धि के अंदर पुरानी स्मृति जागृत होती है। तो हमारे पास दो शक्तियां हैं, मन से भी विचार चलता है और बुद्धि से भी, तो ये दोनों एक करना चाहिए। तो बैठते ही अपने आप से बात करो मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। फिर मेरा रूप, बुद्धि जवाब देती है हाँ ये मेरा रूप है। फिर मेरे गुण, मेरे सात गुण हैं आत्मा के, एक एक गुणों को याद करो, क्योंकि शरीर के भान से अपने आप को जागृत करना जरूरी है, नहीं तो अपने आप आत्म अभिमानी नहीं बनते हम। तो ये पांच प्रश्नों का बैठते ही मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं क्या करता हूं इस भ्रकुटी में बैठकर, इस आंखों से देखता हूं, मुख से बोलता हूं, अभी बाबा से अव्यक्त बाप दादा से मिलने के लिए आए हैं, शरीर का कोई काम नहीं है। तो शरीर को उपयोग, इधर देखना उधर देखना हिलाना कोई काम नहीं, एक ही लक्ष्य लेके हम बाबा से मिलने के लिए आए हैं। अगर उसी लक्ष्य लेकर के मैं क्यों आया इधर, बाबा से मिलने, हमारी दृष्टि हमारा मन बुद्धि एक जगह पर टिकती है, उसको कहते एकाग्रता। तब बाबा के जो वाइब्रेशंस है, बाबा आने के बाद जो मुरली चलाता है, तो एक एक शब्द हमारे अंदर ग्रहण होता है। तो बच्चों को भी स्कूल में कहते ध्यान दे दो, तो ध्यान क्या है, बुद्धि, बुद्धि ग्रहण करती है, तब कहते आज मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। अगर बुद्धि जागृत नहीं, बुद्धि के अंदर और कोई स्मृति है, यहां बैठते हुए भी कोई प्राप्ति नहीं है। तो ऐसा एक आज मौका मिला है, उस मौके को ऐसे खाली छोड़ना नहीं, कुछ प्राप्ति करनी चाहिए। बहुत जन्मों के प्राप्ति करना चाहते हो तो थोड़ा समय अलर्ट होके भी बैठना चाहिए, पहले से आके नहीं बैठना, अच्छी तरह से नींद करो, कि शरीर है, शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, इसको नींद चाहिए। नींद नहीं दिया आपने तो यहां बैठते ही ठंडी हवा आती है, सब वाइब्रेशन सबके अच्छे है, बाबा भी दृष्टि देता है, तो वाइब्रेशन के अंदर अच्छे वातावरण के अंदर अपने आप आंखें बंद हो जाते हैं। तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलता है। इसके लिए श्रेष्ठ स्मृति में अगर आप स्थित होकर बैठते हो तो देखना बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। अभी भी हम पांच मिनट, आप देखना कोई भी उठना नहीं, पांच मिनट अगर अच्छी तरह से बैठो, लेकिन मन और बुद्धि चलनी चाहिए। योग अपने आप नहीं लगता है, दो तार जोड़ने से करंट आता है, बिना जोड़े हुए अनुभव होना चाहिए, ऐसा नहीं। आप इधर बैठो देखो, किसी के आंखें बंद होते थे दिखाई देता है, आप अपने आप को देख लो, पांच मिनट आपका मन और बुद्धि आप चलाओ। देखो बच्चों को खिलाया जाता है, बड़ों को नहीं, बड़ों को अपने पांव से चलना है, इसलिए योग एक यात्रा है। तो आप इधर बैठे हुए ऐसे वातावरण बनाओ, अभी से शुरू करो, और शाम को आके बैठने के बाद भी अभ्यास करो, आंखें खोल के देखो, इधर इतना बड़ा बाबा का चित्र है, बाबा को एक ही जगह पर देखते बैठो और अपने आप से प्रश्न करो। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्सियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्सियसनेस, अपने को जागृत करो। नहीं तो हर सेकंड मैं मना शरीर के स्मृति में रहते हैं। तो अभी पांच प्रश्न बताता हूं साइलेंस में, कोई इधर उधर देखना नहीं, एक ही जगह देख लो और अपने आप से प्रश्न करो मैं कौन। देखना जवाब आता है, बुद्धि से आवाज आता है हां मैं एक आत्मा हूं। फिर पूछो मेरा रूप, हरेक को पता है, ज्ञान का उपयोग करो। तीसरा मेरे गुण, मेरे सात गुण है, एक एक गुणों को जागृत करो। चौथा देखो मेरे कर्म, मैं आत्मा इस भ्रकुटी में बैठकर आंखों से इधर उधर देखता हूं, किधर भी देखना नहीं, शरीर का कोई भी काम नहीं, मैं अव्यक्त हूं, अशरीरी हूं। पांचवा मैं कहां से आया, ऊपर से आया, क्यों आया इधर, सर्वशक्तिवान शिव बाबा को मिलने आया हूं। तो ये पांच मिनट अभी करके देख लो, बिल्कुल साइलेंस, सफेद लाइट रहने दो, नहीं तो लाल लाइट में आंखें बंद होती दिखाई नहीं देता है। हाँ सफेद लाइट में पांच मिनट देख लो, अपने आप को जांच लो क्योंकि मेरी मन बुद्धि इधर उधर जाती है कि एक जगह मैं स्थिर कर सकता हूं। कोई भी काम करने से पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं। शाम को अपने आप आपकी मन बुद्धि एकाग्र नहीं होंगी, पहले प्रयोग करके देख लो कि दोनों इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं, नहीं तो शाम को उसी समय करो तो नहीं होगा, पहले से एक्सपेरिमेंट करके देख लो। ठीक है।